सभी को राम राम। स्वागत है मनोकाव इंडियन एफएम के यहाँ प्रसारण में। मैं हूँ आपका साथी प्रनील शतगन। दोस्तों साथियों, कैसे हैं आप? आशा है कि सभी कुछ अच्छा चल रहा है। तो हमारे प्रसारण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप मनोकाव इंडियन एफएम के बारे में हमको कुछ जानकारी दें, हमको कुछ बताएं। तो बात यह है कि पहले मैं जो हमारा संस्था यह है मनोकाव इंडियन एफएम, उसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कुछ बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारा जानकारी जो है वो आपके साथ में बांटना है। बहुत सारा जानकारी जो है हमारी वेबसाइट में है, तो मैं कोशिश करूंगा कि यह सब को निचोड़ कर एक ये जो आधा घंटा है उसमें बताने की मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। तो मनोकाव इंडियन एफएम आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट में कि जो उनका जो हमारा लोगो है उसमें श्री गणेश जी हैं, विघ्न विनायक श्री गणेश जी। और हमारा जो विजन है, हमारा दृष्टि यह है कि हम अपने समाज को जोड़ें अपने भारतीय संस्कृति, अपने हिंदू संस्कृति, अपने सनातन संस्कृति से, सनातन धर्म से जोड़े अपने समाज को। क्योंकि हमारा समाज आप देखते हैं कि कई लोग इसको बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यह चाहते हैं, हमारा यह लक्ष्य यह है, दृष्टि यह है, विजन यह है कि हम समाज को जोड़े। और आपने देखा होगा कि जो हम अपना जो प्रसारण है या किसी भी जगह पर अपना जो वक्तव्य है, अपना जो स्पीच है, उसका जो भाषण है, जो हम उसका शुरुआत करते हैं, वो हम शुरुआत करते हैं राम राम से। राम राम हम बोलकर उसके बाद हम स्वागत करते हैं अपने श्रोताओं का, या कुछ भी जो स्पीच है हम देते हैं, लेकिन शुरुआत जो करते हैं वो राम नाम, भगवान के नाम से। और हमारे अयोध्यापति श्री राम, वो तो भारत के सबसे बड़े राजा हुए थे, उसके साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे ही, राक्षसों का वध किया, रावण का संहार किया, त्रेता युग के उस समय जो धरती पर पीड़ा था उसको दूर किया, वो तो किया ही किया, लेकिन भारतवर्ष के सबसे बड़े राजा वही थे। और हमारे जो लोग आए हैं भारत से, जो फिजी गए हैं और भी जगह पर गए हैं, वो ज़्यादातर अयोध्या के आसपास के थे। और जो दूर के भी लोग हैं, अयोध्या के आसपास ना भी थे, लेकिन वे फिर भी सभी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म से ही उनका शुरुआत है। और इसी कारण से अब भगवान राम को वो मानते हैं, हम सब मानते हैं, भगवान श्री राम जी उसका नाम लेकर हम आरंभ करते हैं। तो ये जो रेडियो स्टेशन है मनोकाव इंडियन एफएम, एक रजिस्टर्ड चैरिटी है। जी हाँ, रजिस्टर्ड चैरिटी है। अब मैंने उसका जो दृष्टि है, विजन है, उसको बता दिया है। और ये रजिस्टर्ड चैरिटी है, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर manukaoindianfm.nz, जी हाँ manukaoindianfm.nz, वहाँ पर जाकर आप हमको जो आपसे बन पड़ सके डोनेशन जो है आप दे सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो। और हाल ही में भी हमने जो दीपावली शो किया था, बहुत बहुत सक्सेसफुल था, बहुत लोगों ने उसकी बड़ाई की और बहुत लोग आए, 100 से ज़्यादा मेरे ख्याल से शायद था ना, 20-30 ऐसा कुछ अटेंडेंस रहा होगा। तो बहुत बहुत अच्छा गया वहाँ पर, बहुत सारे लोग थे और हमारे हमारे साथ
आप बने रहिए। अभी हम अपना जो फेसबुक लाइव है उससे भी हम कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर आप, जहाँ कहीं पर आप हो, ओकलैंड वाइड आप हमको सुन सकते हो। मनोकाव इंडियन एफएम 104.6 प्लैनेट एफएम के सिस्टम पर आप तो सुन सकते ही हो। उसके अलावा manukaoindianfm.nz हमारा वेबसाइट है, 24/7 आपकी सेवा में यह चलता रहता है। चलिए हम अपने फेसबुक से कनेक्ट करते हैं। सभी को राम राम, स्वागत है मनुका इंडियन एफएम के यहाँ फेसबुक लाइव प्रसारण में। आप हमको फेसबुक लाइव पर अभी सुन सकते हो, उसके साथ साथ आप हमको सुन सकते हो 104.6, जी हाँ 104.6 एक्चुअल एफएम। जहाँ कहीं पर भी आप हो, आपका स्वागत है। हॉलीडे सीजन धीरे धीरे अंत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम न्यू ईयर में हैं, तो हैप्पी न्यू ईयर आपको कहते हैं। और अगर आपने हिंदू सनातन संस्कृति की ओर देखें, उसी के लिए तो मनुकाओ इंडियन एफएम ये जो है सेटअप किया गया है। और जहाँ पर हम अपने समाज को जोड़ते हैं अपने हिंदू भारतीय सनातन संस्कृति से, 24/7 मनुकाओ इंडियन एफएम .nz, वहाँ पर आप हमको सुन सकते हो। हमारे फेसबुक, एप्पल, स्पॉटिफाई पॉडकास्ट, प्लैनेट एफएम की वेबसाइट 104.6 एक्चुअल एफएम अभी आप सुन सकते हो वहाँ पर। और हम एक रजिस्टर्ड चैरिटी हैं, तो हमारी वेबसाइट पर जाकर आप अगर कुछ हमको स्पॉन्सरशिप डोनेशन करना चाहते हो तो वहाँ पर आप कर सकते हो। तो बहुत बहुत स्वागत है जो भी लोग हमको एफएम पर सुन रहे हैं, और फेसबुक लाइव पर जो जो लोग अभी देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कई सारे सौ हज़ारों लोग फेसबुक लाइव पर हमको सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स रखते हो उसके लिए और हमको सपोर्ट करें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप अपने सनातन संस्कृति की ओर देखें और जो फेस्टिवल्स है उसकी ओर देखें, तो मकर संक्रांति का जो पर्व है तो वो जनवरी 15th को होगा। तो बेसिकली अगर हम इस वीकेंड देखें तो इस वीकेंड आप कह सकते हो कई जगह पर मनाया जाएगा। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि उसमें काइट फेस्टिवल्स होता है, जहाँ उसका बहुत महत्व होता है। और यहाँ क्या है कि मल मास का अंत होता है यहाँ पर, और सूर्य जो है वो मकर कैप्रिकॉन राशि में प्रवेश करता है, और इसलिए मकर संक्रांति का यह त्यौहार जो है उसको मनाया जाता है। और हमारा जो सनातन जो कैलेंडर सिस्टम है, जैसे अभी हम न्यू ईयर में है, तो ये आप जानते हैं कि 365 डेज लगता है, .14 से कुछ फ्रैक्शन उतना दिन लगता है धरती को सूर्य की एक पूरा चक्कर काटना, और उसको एक साल बताया जाता है। तो अगर हम इंग्लिश कैलेंडर की ओर देखें, तो जैसे अभी जनवरी 1st हुआ, न्यू ईयर हुआ, तो वहाँ से लिया जाता है। गुजराती कैलेंडर में देखा जाए तो दीपावली के बाद वहाँ से नूतन वर्ष लिया जाता है। और ज़्यादातर जो उत्तर भारत के सनातन कैलेंडर्स हैं उनमें देखा जाए तो रामनवमी जिस रोज शुरू होता है चैत्र मास के प्रतिपदा पहली तिथि में, तो वहाँ से लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो कई समाज है वो अलग अलग जगह से उठाते हैं, लेकिन बात तो एक ही है कि नूतन वर्ष को मनाना, क्योंकि सूर्य का चक्कर धरती जो है वो काट चुका है। और मल मास का अंत जैसे मैंने कहा, तो पहले भी हमने कहा है, इसके डिटेल जो एक्सप्लेनेशन आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, जो मल मास के जब शुरू हुआ था तो हमने कहा था कि हम धरती पर हमें आए और यह एक महीना जो है हमारे ऑब्जर्वेशन से एक महीना जो है ये धनु राशि में सूर्य रहता है, और उसके बाद जैसे ही मकर राशि में जाता है तो ये मकर संक्रांति मनाया जाता है। और यह क्या है कि इसको हम शायद बाद में रखेंगे जो डायग्राम से, जो तो क्या होता है कि अर्थ से देखें हम अगर धरती से तो इट्स डिवाइडेड। अगर आप इमेजिन करें एक सर्कल है, उसमें अर्थ बीच में है, तो फिर उसको आप 12 सेक्टर्स में बांट दें तो वो क्या हो जाता है, 12 राशि हो जाता है ना। तो जैसे होता है कि एरीज मतलब मेष, टोरस मतलब वृषभ, जमुना मतलब मिथुन, कैंसा मतलब कर्क, लियो सिंह, वर्गो माने कन्या, लिब्रा, तुला, स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक, सेगिटेरियस धनु या धनु राशि जब मकर जब मलमास होता है, उसके बाद अभी मकर संक्रांति होगा तो कैप्रिकॉन में जाता है, उसके बाद एक्वेरियस, कुंभ, पाइसेस, मीन। तो यह आपने देखा होगा कि हॉरोस्कोप जो कई जगह पर हॉरोस्कोप जो होता है वह 12 हॉरोस्कोप होता है। तो यह मतलब यह है कि 12 महीना, जी हाँ, ये मतलब होता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि अब उत्तरायण में सूर्य जो है वो जाएगा, मतलब कि अगर हम देखें इस अपने सूरज को, तो आप देखना कि बहुत कितना ज़्यादा गर्मी है, कितना भारी सूरज का जो शक्ति है अभी आप देख सकते। तो अब
धीरे धीरे क्या होगा, सूर्य हमारे ऑब्जर्वेशन से, अर्थ पर हम हैं, धरती पर अभी हम हैं, तो अब हमारे ऑब्जर्वेशन से अभी सूरज का सबसे नीचे, इसलिए बहुत गर्मी है, तो अब धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा, नॉर्दर्न की ओर जाएगा, तो उसको कहते हैं उत्तरायण। और ये दोनों हेमोस्फिया से, नॉर्दर्न हेमोस्फिया से आप देखिए या सदर्न हेमोस्फिया से देखिए, तो दोनों तरफ से एक ही आपको लगेगा। और ये पूरा उत्तर की ओर जाएगा 6 महीना तक, वहाँ पर हमारा विंटर होगा, नॉर्दर्न हेमोस्फिया में फिर समा होगा उधर, और फिर नीचे की ओर 6 महीना लगेगा उसको आना। तो ऐसा है, तो हमारे जो त्यौहार है उसके पीछे जो है बहुत बहुत साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण छिपे हुए हैं। और यह एक, आप जानते हैं कि यह एक बड़ा हमारा जो मकसद है कि हम चाहते हैं, मनुका इंडियन एफएम चाहता है कि यह सब जो ज्ञान है हम अपने लोगों तक पहुंचाएं। कि आपने देखा होगा यहाँ पर काइट फेस्टिवल होता है, बहुत खूब अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे का जो कारण है, रीजंस जो है, वह भी जानना बहुत बहुत ज़रूरी आवश्यक है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि अगर महाभारत की ओर हम देखें, तो महाभारत में जब पितामह भीष्म, जब उनको कई सारा बाण लग जाता है और मृत्यु बाण की शैया पर वो है और मृत्यु की ओर जा रहे हैं, लेकिन अपना प्राण वो नहीं त्यागते हैं, प्राण नहीं त्यागते हैं, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सूरज जो है अब उत्तरायण की ओर जाए, उत्तर की ओर जाए, नॉर्थ की ओर जाए, उसका मतलब है फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जैसे मैंने कहा। और जब नीचे की ओर आता है उसको दक्षिणायन बोलते हैं। और जैसे मैंने कहा कि पतंग उड़ाने का बहुत बहुत महत्व होता है, फेस्टिवल होता है, लोग उड़ाते हैं। और इसका जो कारण अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, भारत में हम देखें और भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंट्री में, लेकिन हमारे संस्कृति के अनुसार अगर हम भारत में देखें तो उस समय क्या है कि विंटर होता है ना, लेकिन विंटर से अब जैसे मैंने कहा धीरे धीरे सीजन जो बदलेगा, तो एक वहाँ कारण बताया गया है कि पतंग उड़ाने का, कि लोग जो है बच्चे खासकर वो धूप में जाए, यह एक कारण बताया गया है। और तिल के लड्डू, जी हाँ, तिल के लड्डू बहुत बहुत लोकप्रिय होते हैं इस समय। तो इसके साथ साथ क्या होगा कि लोहरी का भी त्यौहार, जहाँ लोहरी का भी त्यौहार, लोहरी और पोंगल, ये दो त्यौहार बल्कि साथ साथ है। अगर आप देखें तो इस वीकेंड के समय ये सब त्यौहार बहुत बहुत नज़दीक हैं। तो अगर हम लोहरी में देखें, हमारे प्रेजेंटर्स आज नहीं है, तो वो खास करके अपूर्वा जी वो पंजाब की है, तो वो आपको और बेहतर बता सकते हैं और बताएंगी ज़रूर जैसे मौका मिलेगा, तो वो और अच्छा बता सकते हैं। लेकिन मेरे रिसर्च से मेरा जो ज्ञान इकट्ठा हुआ इस सब्जेक्ट पे, मैं आपको बता दूं, तो लोहरी जो है नॉर्दर्न इंडिया पंजाब में बहुत बहुत लोकप्रिय, आपने देखा होगा कई सारे फिल्म में आपने देखा होगा। तो ये जब हार्वेस्ट हो जाता है उसके बाद यह त्यौहार होता है, और संक्रांति से एक रात पहले ऐसा होता है, और बड़ा सा आग जलाया जाता है, उसमें आरती होती है, थाली सजाया जाता है, अनाज उसमें डाला जाता है, आरती उतारा जाता है, और उसके गोल में, आग के जो गोल में लोग बैठते हैं, और यह सब चीज़ जो है वो आग में देते हैं, उसके साथ साथ जो दूध है, पानी है, वह उसका भी जो चढ़ावा है वह दिया जाता है। और क्या होता है कि यहाँ पर उस आग में फिर सेसमी सीड और जो जेगरी होता है उसको, पॉपकॉर्न, ग्रेन, जिस प्रकार कई प्रकार का होता है, पीनस वगैरह उसमें बनाया जाता है। और लोहरी के कई सारे गीत बहुत प्रसिद्ध है, और मैं रखूँगा अभी हमारे फेसबुक पेज पर, जैसे और नज़दीक हम आएंगे त्यौहार को, एक बहुत ही जो फिल्म का गाना है बहुत ही लोकप्रिय कि आगे लोहरी वे, आपने सुना होगा। तो इस प्रकार से गाना नृत्य होता है, और आप तो जानते हैं कि पंजाब का जो ढोल है बहुत बहुत लोकप्रिय है, और वह तो बजता ही बजता है। तो ये है लोहरी की कुछ जानकारी जो बहुत लोकप्रिय है, बहुत लोग इसको मनाते हैं। और तिल का लड्डू बहुत फेमस है, बहुत लोकप्रिय है इस समय। और उत्तर भारत में क्या होता है, ठंड धीरे धीरे अब कम होगा, तो यह भी एक कारण है। जैसे मलमास के समय यहाँ पर
अच्छा अभी हम देखें मल मास में भी है तो बहुत गर्मी यहाँ पर है सदर्न हेमस्फिया में, और उसी प्रकार नॉर्दर्न हेमस्फिया में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अब लोहड़ी के समय, मकर संक्रांति के समय, पोंगल के समय ठंड से निकला जाएगा और उसी कारण से यह सब त्यौहार है। एक और जो मुझे मिला जानकारी कि एक जो दुल्हा भट्टी पंजाब में एक शख्स थे और ये मुगल अकबर के समय थे, और ये क्या करते थे, ये बचाते थे जो हिंदू लड़कियां हैं उनको आक्रमणकर्ताओं से ये बचाते थे। तो इस पर भी कई सारे गीत जो है लोरी के बहुत मशहूर है। ज़्यादातर इसमें क्या हो जाता है कि क्योंकि लोरी जो है पंजाब में ज़्यादातर मनाया जाता है और वहाँ पर तो पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है, तो ज़्यादातर जो गीत है वो पंजाबी में, तो मुझे तो समझ में आता नहीं, लेकिन एक जैसे मैंने कहा कि आगे लोरी वे जो वो जो गीत है वो अवश्य हम रखेंगे हमारे फेसबुक पेज पर, और वो एक गीत है, लेकिन और ज़्यादातर जो गीत जो है वो पंजाबी में है, लेकिन उसके उपरांत जो ढोल का जो बीट है आप जानते हैं म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं होती और ढोल बजता है तो लोग नृत्य नाच अवश्य करते हैं। तो फिर इसमें और सारे जैसे मैंने कहा कई जो चीज़ है उसमें बनाया जाता है, लोग उसका आनंद उठाते हैं, और ये जो चढ़ावा है और जो खाने पीने का जो चीज़ है उसमें बनाया जाता है, उसमें एक और कारण जो आया कि माँ जो अन्नपूर्णा है हमारे शिव जी की अर्धांगिनी, आप जानते हैं माँ पार्वती का एक रूप है, उनका भी स्मरण होता है, उनका उनका भी एक पूजन होता है या वहाँ से निकला है, क्योंकि जो जितना भी अन्न हम खाते हैं माता अन्नपूर्णा ही उसको ऐसा हमारा मान्यता है कि वहीं से वहीं माता अन्नपूर्णा ही उसको देती है, तो ऐसा मान्यता है, और अग्नि का तो विशेष स्थान है हमारे सनातन संस्कृति में। तो लोहड़ी के समय आप जानते हैं कि अग्नि और उनका चढ़ावा, अग्नि में चढ़ावा या होता है, और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि अब हमारा जो हिंदू सनातन भारतीय त्यौहार है उनका तो बेसिकली लाइन लग जाएगा, जैसे अब सीज़न ये हो गया है, ऐसे हमने जो पिछले हफ्ता प्रोग्राम किया था, कार्यक्रम जो किया था प्रवीण भाई के साथ, उसमें आपने देखा होगा कि हम होली का भी तैयारी कर रहे हैं, फाग हम कलेक्शन अपना बढ़ा रहे हैं, अगर आपके पास कुछ फाग गायन हो आप ज़रूर हमारे पास भेजें। और जैसे हमने कहा कि लोरी के बारे में हमने चर्चा किया, मकर संक्रांति के बारे में हमने चर्चा किया, तो उसके साथ साथ पोंगल, जी हाँ पोंगल एक त्यौहार है जो ज़्यादातर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में और साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ पर ज़्यादा जो सदर्न इंडियंस हुआ है वहाँ पर बहुत मशहूर है पोंगल का त्यौहार। इसमें क्या होता है कि हम धन्यवाद देते हैं, या जो लोग मनाते हैं वो धन्यवाद देते हैं सूर्य देव को, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छा फसल जो है ना, क्रॉप कट जो क्रॉप हार्वेस्ट है वहाँ पर भी होता है, तो जैसे लोहड़ी का भी त्यौहार क्रॉप हार्वेस्ट के समय होता है और पोंगल का त्यौहार भी क्रॉप हार्वेस्ट के समय होता है, तो यहाँ पर धन्यवाद दिया जाता है जो सूर्य देव, क्योंकि जब सूर्य निकलता है, सूर्य देव निकलते हैं तो उसी से तो अनाज होता है, उसी शक्ति से तो अनाज होता है। तो यह होता है कि चार दिन का त्यौहार होता है पोंगल के समय, और पोंगल का मतलब ही है कि जो उबाला हुआ नया चावल जो फसल होता है लोग काटते हैं उसको दूध और गुड़ में मिलाकर खीर की तरह उसको बनाया जाता है, और उत्तरायण का भी महत्व इसमें होता है, और पोंगल की देवी माँ अन्नपूर्णा, आप जानते हैं माता पार्वती का एक रूप है। तो आप देखिए कि लोहड़ी और पोंगल में कई सारे सिमिलरिटीज़ हैं, कई सारे सिमिलरिटीज़ हैं, भले ही आप, मैंने इस बात का जिक्र बहुत बहुत बार किया है दीपावली के जो फंक्शन में भी हमने किया था, कि भले ही अगर आप नॉर्दर्न इंडिया से हो या आपकी फैमिली नॉर्दर्न इंडिया से है या सदर्न से है या वेस्ट से है या ईस्ट से है, कहीं से है, हाँ डिफरेंसेस तो है, डिफरेंसेस ऑब्वियसली है कि भाषा में फ़र्क है, कुछ कल्चरल सांस्कृतिक फ़र्क है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि सिमिलरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, कल्चरल सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे
अब देखिए कि लोहड़ी जो पंजाब में मनाया जाता है, नॉर्दर्न इंडिया में मनाया जाता है, और पोंगल जो है सदर्न इंडिया में मनाया जाता है। भले इसमें थोड़ा अंतर है, लेकिन कारण तो निकल के लगभग लगभग एक ही आता है। तो इस पर हमको फोकस करना चाहिए। जैसे मैंने बहुत बार पहले कहा है कि मैंने देखा है कि कई लोग यहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, उसका उपयोग करके हमारे लोगों में दरार पैदा करते हैं। मैंने देखा है कि वो ये फीजी का है, वो नॉर्थ का है, वो साउथ का है, दरार पैदा करते हैं। लेकिन वहाँ नहीं करना चाहिए, हमको फोकस करना चाहिए कि हम कैसे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आए। और सभी को क्या जोड़ता है? हमारा सनातन हिंदू भारतीय संस्कृति ही जोड़ता है, वही जोड़ता है। अगर हम उस पर फोकस करें तो हम एक हो सकते हैं, और एज अ कलेक्टिव इंडियन सोसाइटी एकता में बल है। और जो पोंगल का कार्यक्रम जो मनाया जाता है, खास करके सदर्न इंडिया में, जैसे मैंने कहा, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड आता है कि अतुकुल पोंगल लार्जेस्ट गैदरिंग, जी हाँ, लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वीमन ग्लोबली, 2.5 मिलियन जो महिलाएं हैं, 2.5 मिलियन महिलाएं वो एकत्रित होती हैं और पोंगल का फेस्टिवल जो है वो साथ में मनाती है। इसके हम वीडियोस और रखेंगे, आप देख सकते हैं। तो यह सब जानकारी था पोंगल, लोहरी और मकर संक्रांति के बारे में। जो जो लोग अभी हमारे साथ अभी आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। उनका इंडियन एफएम को आप सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो 104.6 एफएम, जी हाँ, प्लेनेट एफएम के सिस्टम पर अगर आप सुन रहे हो, हमारा जो प्रसारण है एक्चुअल लाइव एफएम पर अभी जा रहा है, तो वहाँ पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अकेला ही हूँ मैं, हमारे साथी अभी व्यस्त हैं। तो मैं सोच रहा था कि और क्या जानकारी हम आपके साथ रखें, क्योंकि ये हमारा आधा घंटा का जो स्लॉट है हमको मिला है हर मंडे को प्लेनेट एफएम द्वारा 104.6, वहाँ पर आप हमको सुन सकते हो। तो फेसबुक लाइव पर मैं देख रहा हूँ कई लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, आपको राम राम, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मनुकाओ इंडियन एफएम को आप सुन रहे हो, तो शायद हम इसके बारे में बात करें। अभी 8 मिनट का समय हमारे पास है। जो निविया का, तो कई लोग पूछ रहे थे कि निविया कैसे, क्यों अलग अलग जगह से लोग उठाते हैं, कोई उठाता है दीपावली के समय, कोई रामनवमी के समय, वेस्टर्न कैलेंडर में भी। तो जैसे मैंने कहा शुरू में कि आप कहीं से भी उठा सकते हैं, क्योंकि 365 डेज लगभग लगता है अर्थ को जो सूर्य के गोल घूमना, और जहाँ पर एक गोल होता है वहाँ पर निविया कई समाज कई जगह से करते हैं। और अगर हम मकर संक्रांति के बारे में देखें और मल मास के बारे में देखें, तो यहाँ दो जो दिन हैं वहाँ हम सूर्य जहाँ पर होता है सन, उसके अनुसार हम निकालते हैं कि हाँ इस दिन। तो यही कारण है कि मकर संक्रांति जो है मल मास के अंत में होता है, 15th-14th January ऐसे होता है, और 14th-15th December ऐसा वहाँ पर मल मास शुरू होता है। तो सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड है, और ये है क्योंकि अगर हम सूर्य को सन को देखें तो वो तो फिक्स्ड ही है अपनी जगह पर। लेकिन उसके उपरांत और जितने भी त्यौहार हैं हमारे हिंदू सनातन भारतीय त्यौहार, वह क्या है कि हम देखते हैं कि चांद के अनुसार। जी हाँ, यह भी सवाल कई लोगों ने पूछा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हमारे जो डेट्स है वहाँ बदलता रहता है। तो अगर आप इमेजिन करें कि एक कैलेंडर में इमेजिन करना 1st January से लेकर 31st December, तो उतना दिन लगता है अर्थ को, पृथ्वी को सूरज के गोल घूमना। तो वह तो है ही, तो फिक्स्ड, वो फिक्स्ड है। लेकिन हम जब देखते हैं कि अपने त्यौहार हम कब मनाए, तो वो तो होता है कैसे, वो होता है चांद को हम देखते हैं। क्योंकि अगर आप रोज अगर आप इमेजिन करें फिर से कि हज़ारों साल पीछे आप जाएं तो वहाँ पर कैलेंडर नहीं है, सिस्टम नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको कैसे लगेगा, आप कैसे बता पाएंगे कि एक महीना हो चुका है? अगर सोलर सूरज की ओर अगर हम देखें तो वो तो निकलता है, उठता है, निकलता है, उठता है ना, तो उससे आप पता लगा सकते हैं, लेकिन हालांकि आपको समय लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सूरज फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ द अर्थ, सूरज 6 महीना ऊपर जाता है और फिर 6 महीना नीचे आता है, तो वो करने में काफ़ी समय लगेगा, कि 6 महीना लंबा समय होता है। तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, और जो लोग करते थे उस समय, और जो हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने तो पूरा सिस्टम ही लिख कर दे दिया। जैसे मैंने कहा कि दीपावली का अगर डेट हम निकालें तो हम आपको यहाँ से 1000 years इन द फ्यूचर डेट दे सकते हैं, और 1000 years बैक वो उससे पहले भी डेट्स दे सकते हैं। इतना एडवांस्ड हमारा हिंदू इंडियन सनातन सिस्टम है, और अगर कोई भी लोग हमको चैलेंज कर रहे हैं कि या डाइट या नहीं है वहाँ है, तो उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि साइंटिफिकली क्या डेट्स है क्या नहीं। तो अगर आप इमेजिन करें कि आप 1000-2000 years पीछे हो समय में, और अगर आपको बताना है कि एक महीना कैसे होगा, तो आप हर रात चांद को देखोगे, और चांद जिस प्रकार से बढ़ता घटता है उस प्रकार से आप पता लगा सकते हो कि एक महीना कब होता है। तो यह कारण है कि हमारा जो ज़्यादातर त्यौहार है वो तिथि, तो वही से तो तिथि बनता है, जो चांद का जो मूवमेंट है, जो चांद एक स्टेप आगे जाता है, एक स्टेप आगे जाता है, तो वह एक तिथि होता है। उसके उपरांत नक्षत्र भी होते हैं, योग कर्ण सभी कुछ होता है, लेकिन ज़्यादातर तिथि के ऊपर होता है। और ऐसे मैंने कहा कि चांद जो एक स्टेप आगे जाता है तो वहाँ तिथि होता है। तो इन जनरल इसको हम बोलते हैं लूनी सोला कैलेंडर। लूनी सोला क्यों? क्योंकि हम चांद को भी लेते हैं, सूरज को भी लेते हैं, जी हाँ। दिवस, दिवस होता है एक एक दिन, सोला दिन मतलब जब सूरज निकलता है और फिर सूर्यास्त होता है। और अगर तिथि के अनुसार हम देखें तो जिस जो तिथि सूर्य जब निकलता है, सूर्योदय के समय होता है, वह तिथि उस दिन का मुख्य तिथि होता है ज़्यादातर। लेकिन जिस त्यौहार को रात में मनाया जाता है, जैसे नवरात्रि हो या श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, तो हम देखते हैं कि कौन सा तिथि जो है वो रात में होता है। तो टेक्निकल उसमें है एक्सप्लेनेशन, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल से जो डिबेट्स होता है कि दीपावली कब है, होली कब है, इसका डेट्स वो तो टेक्निकली हम बता सकते हैं, और भी गुणीजन बता सकते हैं कि कब है कब नहीं है, लेकिन वो टेक्निकलिटी वो हो जाता है। लेकिन अगर हम इमोशन की बात करें कि हमारे हिंदू सनातन भारतीय संस्कृति के लिए हम कर क्या रहे हैं, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, वह और ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कोई त्यौहार है संडे को टेक्निकली, जी, तो कई जगह पर वो सैटरडे को भी मना लेंगे, फ्राइडे को भी मना लेंगे, संडे को भी मना लेंगे ना। तो मेरे ख्याल से मैं नहीं सोचता कि वो कुछ बुरा है, क्योंकि एज लॉन्ग एज आप उसको मना रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दीपावली जब होता है, जैसे हमने दीपावली का किया था कार्यक्रम, तो वो तो दीपावली से पहले था, है ना, लेकिन वो कार्यक्रम जो था वो दीपावली के लिए था, है ना, इट वॉज डेडिकेटेड टूवर्ड्स दिवाली। और उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा, हमारे सांस्कृतिक जो फेस्टिवल्स है, त्यौहार है, उसका लाइन लग जाएगा और हम यह मनाएं। कुछ भी हो सके, कोई भी शक्ति हो सके आपके पास, आप घर में मनाएं, आपको बच्चों को अपने परिवार को साथ लेके मनाएं, लेकिन मनाएं, क्योंकि ये तभी तो जानेंगे हमारे बच्चे की क्या है हमारा संस्कृति। इसके साथ साथ आप सभी को राम राम आज्ञा हम चाहेंगे। जय श्री राम। आपसे हम बाद में मिलते हैं।